जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।
क्योंकि अभी समय कौन सा है, इसलिए 7 बार ओम शांति की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति।
पहले पूरा हो गया नहीं? ओके, कितनी बार हुआ? 5, पहले भी 2 बार किया, 7 बार नहीं हुआ? 8 बार हो गया, 7 बार हुआ। अच्छी बात, बहुत अच्छा। फिर ये तो हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ठीक है। उसको मूल्यनिष्ठ बनाना हम सबका परम कर्तव्य है, ठीक है। अब हम मूल्यवान या सर्वगुणों से संपन्न, सर्वशक्तियों से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, दुआओं से संपन्न बनना चाहते हैं, चाहते है ना? हम सबकी इच्छा होती है कि हम संपन्न बने, संपूर्ण बने। उसके लिए यहाँ पर तपस्या के लिए आए हैं, ठीक है। अब विचार चलता है कि लक्ष्य तो हम सबका बहुत ऊंचा है ना? पर लक्ष्य के अनुकूल हमारे संकल्पों का शुद्धिकरण हुआ है? हमने मुक्ति पाई, व्यर्थ से मुक्ति पाई है, या अभी तक संकल्प, विकल्प, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, है ना? क्योंकि जब तक हमारे संकल्पों का शुद्धिकरण नहीं हुआ तब तक हम संपन्न नहीं बन सकते, संपूर्ण नहीं बन सकते। ये शाश्वत है, इसको हमें स्वीकार करना ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि संकल्प ही, संकल्प शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और मूल शक्ति है, आदि अनादि शक्ति है। अब इस मूल शक्ति को, इस संकल्प शक्ति को शुद्ध करना परम आवश्यक है। ये भी हम जानते हैं हम सबके जीवन के अंदर संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। संकल्प शक्ति एक खजाना है, संकल्प शक्ति, संकल्प एक बीज है। जैसा बीज डालेंगे वैसा ही उसी के अनुकूल हमें फल की प्राप्ति होगी। अभी अभी हमने सुना जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाओगे, सुना ना? इसमें भी किसका महत्व है? संकल्प का महत्व है। तो संकल्प जो हम सबका खजाना है, उस संकल्प की शुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अब उसका शुद्धिकरण कैसे होगा, उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? हम सब के अंदर यही एक संकल्प है कि हमारे अंदर सदा ही शुद्ध संकल्प चले। व्यर्थ संकल्प जो गिरावट की ओर ले जाते हैं, जो निराशा और उदासी पैदा करते हैं, जो दूरियां पैदा करते हैं, वो संकल्प हमारे जीवन के अंदर नहीं आए और हम सदा ही शुद्ध संकल्पों में रमन करते रहे। और उन शुद्ध संकल्पों में रमन करते हुए अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ और महान बनाते रहे। तो संकल्प शुद्ध कैसे होगा, इस पर आज विचार करते हैं ना? वैसे तो प्राण बाप दादा शुद्ध संकल्पों के ऊपर बहुत बहुत हम बच्चों को ज्ञान योग से सींचते रहते हैं। हमारा ध्यान सदा ही संकल्प शक्ति के ऊपर खिंचवाते रहते हैं, क्योंकि जैसे हम सबकी इच्छा है, हम सबका लक्ष्य है कि हम देव आत्मा बने, हम फरिश्ता बने, हम आशरीरी बने। बाबा कई बार जब क्लास कराते कराते ये शब्द बोलते हैं, अभी एक सेकेंड के अंदर तुम आशरीरी बन जाओ। और मेरे अंदर उस समय बहुत कभी तो अनुभूति होती है और कभी बहुत विचार भी चलने लगता है कि प्राण बाप दादा का आदेश है, संदेश है, शिक्षा है और अभी अभी हमसे चाहता है कि तुम एक सेकेंड में आशरीरी बन जाओ। हम अपने दिल पर हाथ लगा करके पूछे कि हमारे में इतनी शक्ति, हमारे संकल्प के अंदर इतनी शक्ति आ गई है जो हम अपने बाप के फरमान को एक सेकंड में पूरा कर सकते हैं। थोड़ा साक्षी होकर के हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है ना? अब ऐसा नहीं नहीं करते हुए हमने इतनी आयु व्यतीत कर दी, अभी वो मार्जन नहीं रही कि अब हम ऐसा कहें कि हमारे संकल्पों में इतनी दृढ़ता नहीं है, हमारे संकल्पों में इतना शुद्धि नहीं है जिसे हमारे कर्म और संस्कार दोनों दिव्य बन जाए ना? और सत्यता और पवित्रता और दिव्यता हमारे जीवन का एक अंग बन जाए ना? तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को बहुत सारी बातें समझाते रहते हैं। बाबा कहता है कि कुछ भी संसार के अंदर करना है, आप देखें संसार में कोई भी प्राणी कुछ करना चाहता है, जैसे महात्मा गांधी जी का ही मिसाल लो, उनके अंदर एक संकल्प पैदा हो गया कि मुझे विदेशियों को भगाना है, पर बिना युद्ध के भगाना है। ठीक है, जब उनके अंदर ये शुद्ध संकल्प पैदा हुआ और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद किया, क्रांति पैदा की, परंतु वो क्रांति का रूप नहीं बना, लोग उनके पीछे नहीं, उनकी आवाज में इतनी ताकत नहीं रही जिसके कारण लोग उनके पीछे पीछे चले, तो महात्मा गांधी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है, मैंने अपने देश को आजाद करने का शुद्ध संकल्प लिया है पर मेरे संकल्प में शक्ति नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने अपने आप का निरीक्षण किया, अपने आप का अवलोकन किया और अपने आप को क्या पाया, वो गुलाम है। किसके गुलाम? कस्तूरबा माता के गुलाम है। तो फिर अपने आप को समझाने लगे, एक गुलाम भारत जो गुलाम है उसको गुलामगिरी से कैसे मुक्त करेगा, ऐसे ही हम व्यर्थ संकल्पों के गुलाम समस्त विश्व के अंदर स्वर्ग की स्थापना कैसे करेंगे, थोड़ा पूछिए अपने आप को, है ना। समस्त विश्व के अंदर हम एक राज, एक धर्म, एक भाषा लाना चाहते हैं, परंतु जब हमने अपने आप का अवलोकन करना शुरू किया तो क्या पाया, जैसे महात्मा गांधी ने पाया, मैं कस्तूरबा का गुलाम। फिर उन्होंने स्वाध्याय किया, स्वचिंतन किया, मनन किया और अपने आप को बैठ करके सशक्त किया, और उसके बाद जब उन्होंने देखा उनकी बुद्धि उधर से बिल्कुल निकल गई है, अपने आप को डिटैच कर लिया उन्होंने, तो फिर गए कस्तूरबा माता के पास, कस्तूरबा मैं आपके पास कुछ संकल्प लेके आया हूं। तो वो तो त्याग की देवी थी, तो उसने कहा क्या चाहते हैं आप, कहा कि मैं, आपको पता है कि मैं देश को आजाद करवाना चाहता, स्वतंत्र करवाना चाहता हूं, तो मैं तुझसे भी स्वतंत्र होना चाहता हूं, आज से लेकर तू मैं तुझको मां की दृष्टि से देखू। कस्तूरबा माता ने कहा ठीक है ना। अब जब वो फिर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, लोग उसके पीछे लग गए, और वो सारा कुछ आप सब अच्छी तरह से, क्योंकि हम भारत देश के सेनानी हैं, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने कैसे, लोगों ने, माताओं ने अपना तन मन धन मन पुत्र, लेडीज ने अपने पतियों तक की दे दिया ना, समर्पणता जागृत हो गई सबके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम चाहते हैं हमारे संकल्पों का शुद्धिकरण हो, हम एक सशक्त आत्मा बन जाए, हम जो बोले वो सत्य हो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी का अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने पाया होगा कि ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, और साक्षात्कार होने के बाद विष्णु जी का जब साक्षात्कार हुआ उनको, और जब उन्होंने आम तत्त्वम का वरदान दिया, तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, है ना, और फिर बिना त्याग के, बिना तप के, बिना वैराग्य के कुछ नहीं हो सकता था, नहीं तो अच्छा हीरो का बिजनेस करते, और वो सब कुछ त्याग करके घर में टेलीग्राम डाल दिया, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तर अल्लाह की हुआ रेल कर रही, ठीक है। आज हम चाहते हैं हमारे संकल्प शुद्ध हो, सत्यता और दिव्यता मेरे रूहानियत मेरे जीवन का तेज हो, ओज हो, है ना, चाहते हैं, परंतु आज हम साक्षी होके देखें हमें त्याग है, तप है, वैराग वृत्ति है, या हमने, हमें दृढ़ता है, जैसे उन महात्मा गांधी के अंदर दृढ़ता हुई। सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति बन गया, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, उनके अंदर दृढ़ता ना होती तो वह आज प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। दृढ़ संकल्प का तेज सूरज के तेज से बढ़कर, जैसे सूरज का तेज धरती को गर्म देता है और उसके बाद जीवाणुओं कीटाणुओं को सब नष्ट करके हम सबको ऊर्जा भी देता है, फल पौधों को भी ऊर्जा देता है, और सारे संसार के अंदर हरियाली और खुशहाली लाता है, लाता है, लाता है ना। इसी तरह से हम अपने आप से पूछे कि क्या दृढ़ संकल्पी हूं, मेरे दृढ़ संकल्प के तेज से मेरा व्यर्थ, व्यर्थ से मैंने मुक्ति पाली, ना मेरा व्यर्थ बोल रहा, ना मेरा व्यर्थ कर्म रहा, ना मेरा व्यर्थ स्वभाव रहा, ना मेरा व्यर्थ सोच रहा, ना मेरा व्यर्थ व्यवहार रहा, या उसके बाद मेरा संकल्प मेरी बुद्धि मेरे संस्कारों के ऊपर मेरा कंट्रोल है, रूलिंग है। मैं चाहती हूँ स्वराज्य अधिकारी बनूं, राज्य अधिकारी बनूं। मेरा लक्ष्य तो यही है ना कि मुझे भविष्य का क्या बनना है, राजा पुत्र बनना है ना लक्ष्य। और इधर राजा पुत्र होकर के रहेंगे तब तो भविष्य में बन सकेंगे, नहीं तो कैसे बन सकेंगे। तो राजा पुत्र, राजा जो होता है वो क्या करता है, अपने कार्यकर्ताओं से कार्य करवाता है या खुद करता है, क्या करता है, है? कार्यकर्ताओं से करवाता है ना। तो क्या संकल्प, बुद्धि, संस्कार, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा संकल्प मन बुद्धि संस्कार का मिश्रित रूप आत्मा कहलाती है, ठीक है। तो ये तीनों कार्यकर्ता मेरे कंट्रोल में है, है? शुद्ध संकल्प में एकाग्रता है, जहां शुद्ध संकल्प की शक्ति है वहां एकाग्रता जरूर आएगी, वहां कमांड जरूर आएगी, वहां कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर होगी, वहां व्यर्थ उससे बहुत दूर होगा, है ना। तो आज मैं राज्य अधिकारी बनना चाहती हूं तो क्या मेरे शुद्ध संकल्पों में के द्वारा मैंने अपनी शक्ति को अपने मनोबल को इतना स्ट्रांग कर लिया जो मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा संकल्प मेरी बुद्धि मेरे संस्कार मेरे अनुसार कार्य करेंगे। अगर वर्तमान कहते, वर्तमान भविष्य का दर्पण होता है। भविष्य में हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या बनेंगे, उसका दर्शन अभी से ही हो रहा है ना? होनहार के कहते हैं पहले से ही पता लग जाता है ना। तो मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूं वो वर्तमान में दिखाई देगा। हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो उनकी पर्सनैलिटी से ही दिखाई देता था कि वो वर्तमान भी, उनकी पर्सनैलिटी दिखाई देती थी कि ये एक महान हस्ती है, रूहानियत की आभा लिए हुए है, एक प्रकाश पुंज है, सूरज के समान तेजस्वी है ना। मम्मा को देखते थे तो एक चंद्रमा की तरह लगती थी, शीतलता उनके जीवन का चारों तरफ सराउंडिंग में दिखाई देता था। और मन करता उन दोनों के नजदीक जाकर के बैठे और उस आकर्षण को, मैं आपको एक बात अपनी ही बताती हूँ कि मुझे पहले ये निष्ठ, क्योंकि मैंने भक्ति किया था तो भक्ति में भागवत रामायण में बहुत सारी सुख सागर बहुत सारी इस तरह की कहानी आती है जिसमें अजीबोगरीब बातें होती थी ना। तो इधर का लाइफ थोड़ा साधारण दिखाई देता था, है ना। तो मुझे ठहर करके आता था ये सचमुच इस बाबा में भगवान आता है, सचमुच इस बाबा में भगवान आता है। और मैं ऐसी बैठती थी सामने और मेरे अंदर ये, मैं बोलती नहीं थी किसी के साथ, अंदर मेरे को संतोष होना चाहिए जिसके लिए मैंने जीवन को समर्पित किया, उसके बारे में मुझे अनुभव तो होना चाहिए ना। तो मैं जैसे, परंतु बाबा की जब वाणी चलती थी, जब श्री बाबा की प्रवेशता होती थी, वो सर्च लाइट पड़ती थी आंखों के आगे और मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं सुनती जाती और अश्रुधारा बहती जाती, इतना तेज आता था। फिर भी मेरे को समझ में नहीं आता, फिर डायरेक्ट बाबा मेरे से बात करता था। अभी भी कई बच्चों के तेज से नहीं होता, ऐसे करते करते हमारे को यह अनुभव हुआ कि ये कोई साधारण हस्ती नहीं है। और हम उस साधारण हस्ती जो एक दिव्य हस्ती है, श्री बाबा दिव्य हस्ती है, सर्वोत्तम है, सर्वज्ञ है ना। और उन्होंने इस तन में प्रवेश किया, वो तन भी कोई कम नहीं है। तो आज सोरा सोचिए, हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के बच्चे, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का भी बाप है, जो सर्वात्मा का पिता, जो सर्वदेव आत्माओं का पिता, जो सर्व धर्म आत्माओं का पिता, उसकी हम संतान है। क्या वो नशा, वो निश्चय, वो संकल्प, वो पवित्रता हमारे इर्द गिर्द है? हमारी वाइब्रेशन, लोगों को हमारे से क्या वाइब्रेशन मिलते हैं? क्या वाइब्रेशन मिलते हैं? एक साधारण प्राणी है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी से, परंतु वो शक्तिशाली स्वरूप दिखाई देना चाहिए। तब तो कहेंगे कदम पर कदम है, हम उनके कदमों पर चलते हैं, है ना? तो जब तक हमारे जीवन के अंदर हमने अंदर बैठकर अंतर्मुखता की कुटिया में बैठकर शुद्ध संकल्पों में रमन नहीं किया, शुद्ध संकल्पों की शक्ति को जागृत नहीं किया, शुद्ध संस्कार नहीं बनाए, शुद्ध व्यवहार नहीं बनाया, तब तक वो ज्योत जगी नहीं रहेगी, वो जगती बुझती रहेगी, है ना? तो हमें ये बैठ बैठ करके प्रयास करना होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रयास किया। अगर हम जब सचमुच चाहते हैं कि मेरे शुद्ध संकल्पों की शक्ति जागृत हो जाए, व्यर्थ संकल्प मेरे समाप्त होते जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विस्तार को सार में समाना होगा। अपने आप से पूछो हम कितने विस्तार के अंदर है, और विस्तार में बुद्धि भ्रमित होती है, विस्तार में अनेक लोगों के कनेक्शन में हम आते हैं, अनेक संस्कारों वाली आत्मा हमारे कनेक्शन में आती है, तो ना चाहते हुए भी उनके संकल्पों का प्रभाव आने लगता है, आता है ना? तो वो ना आए तो उसके लिए मुझे अपने आप को बार 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 रिमाइंड करना होगा, मुझे विस्तार में नहीं जाना, मुझे सार में अपने आप को स्थित करना है। विस्तार पावरफुल नहीं होता, सार पावरफुल होता है। आप देखेंगे नेगेटिव संकल्प, जिनको ज्यादा नेगेटिव संकल्प चलते हैं, उनका शरीर कैसा होता है? खोखला, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को अपने नेगेटिव संकल्पों से खत्म कर दिया है। उसको छुई मुई के पौधे के समान होता है, थोड़ा सा कुछ कहो निराश होके बैठ जाएगा, उदास होके बैठ जाएगा, किनारे पर चला जाएगा, मैं किसी से बात नहीं करता हूं, है ना? क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत व्यर्थ के संकल्प चलते 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 उसकी मनोबल इतना क्षीण हो जाता है, वो कोई भी बात को अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे पुराने बाप दादा कई बार वाणी के अंदर बोलते हैं, विस्तार छुई भुई का पौधा नहीं बनना। अब हम छुई भुई का पौधा ना बने, हमारे को कोई की बात का इफेक्ट कोई के प्रभाव में ना आए, तो उसके लिए हमें यही अटेंशन देना होगा कि हम बार बार शुद्ध संकल्प, शुद्ध वातावरण, शुद्ध खान पान, शुद्ध रहन सहन, और जो हमारे बाप ने हमारे सामने पवित्रता का लक्ष्य दिया है, क्योंकि पवित्रता का सूर्य सबसे बड़ा सूर्य है, जहां पवित्रता का सूर्य जागृत रहेगा, जगा रहेगा, चमकता रहेगा, वो व्यक्ति सदा ही चमकता रहेगा। उसके पास न व्यर्थ चिंतन होगा, न व्यर्थ बोल होगा, न व्यर्थ कर्म होगा, न व्यर्थ संस्कार होंगे उसके, उनसे वो बहुत दूर दूर उपराम उपराम उपराम। नहीं तो आप सब ये जानते हैं, संकल्प की शक्ति रॉकेट से ज्यादा तेज है। आप कुछ नहीं बोलिए, परंतु आपके मन में सिर्फ संकल्प आ जाए कि ये व्यक्ति थोड़ा ऐसा है, तो वो ऐसा ही बन जाता है। ये हमारे 62 साल के जीवन का अनुभव। इस पर मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुना करके थोड़ा इसको और क्लियर करना चाहती हूँ कि एक बार एक राजा अपने वजीर के साथ घूमने जाया करता, सैर करने जाते थे। बीच में एक हलवाई की दुकान पर थी, तो वो राजा अब जब वहां जाते तो वजीर उनका बहुत आदर, वजीर नहीं वो हलवाई उनका बहुत आदर सत्कार करता। पर राजा बहुत खुश भी होते, परंतु जब उसको गौर से देखते तो राजा के मन में भी कुछ रोष पैदा हो जाता, व्यर्थ संकल्प पैदा होने लगते। राजा सोचने लगा एक दिन बैठ के कि हम जब जाते हैं इसकी दुकान पर तो ये इतना आदर करता है, इतना सत्कार करता है, इतना खिलाता है पिलाता है, पर मेरे मन में इसके लिए दूषित विचार क्यों पैदा होते हैं। राजा उसके बारे में चिंतन करने लगा, परंतु उसको कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर वो अपने वजीर से कहता है कि राजा वजीर एक बात है, वो हलवाई हमारा बहुत आदर सत्कार करता है, पर जब मैं उसको गौर से देखता हूं ना तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसे वैसे संकल्प पैदा होने लगते हैं, इसका कारण क्या है। तो वजीर कहता है कोई बात नहीं, आज आप नहीं चलेंगे मैं चलूंगा। वो अकेला गया, वैसे ही उसने राजा वजीर का आदर सत्कार किया। पर फिर उसके बाद वजीर कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो वो कहता है बताइए। वो कहते हैं वजीर कहता है आपके मन में कोई संकल्प है क्या। कहा नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं है। फिर वजीर कहता है हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके मन में कोई संकल्प है क्या। फिर भी बोलता है नहीं। ऐसे 5-6 बार ऐसे उनकी आपस में बातचीत होती है। फिर वजीर बहुत प्यार से उसको बोलता है भाई आपके मन में कोई संकल्प चलता है क्या। तो वो क्या बोलता है कि हाँ चलता है मेरे मन में संकल्प। क्या चलता है? कहता है मेरे पास बहुत सारे चंदन के पेड़ है, वो बिकते नहीं है, तो मेरे मन में यही संकल्प चलता है ये राजा कब मरेगा और कब चंदन मेरा बिकेगा। समझा मेरे प्यारे भाई बहनों? हम तो समझते हैं हमारा संकल्प किसी के पास नहीं पहुंचता, परंतु हमारा संकल्प सारे वायुमंडल में घूमता है, बिना बताए उसके पास पहुंच जाता है जिसके प्रति आप संकल्प कर रहे हैं। मेरे लाइफ का अनुभव, एक भाई हम लोगों को बहुत मेरे को मैंने अनुभव किया जब शुरू में सेवा में लगी, तो एक भाई था किसी सेंटर जहां पर मैं रहती थी पहले, तो वो बहुत तंग करता था आने वाला भाई। तो मैं कहती थी सचमुच तू ऐसा ही है, तो मैंने देखा, हालांकि मैंने बोला नहीं उसको, वो और भी ज्यादा भी कर गया। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो इसको सुधारना चाहती हूं पर ये सुधरने की बजाय बिगड़ता ही जा रहा है। फिर मैंने अपने आप का अवलोकन किया, स्वाध्याय अपने अंदर किया, तो मैंने कहा दोषी कौन, ये दोषी नहीं हूं मैं, दोषी मैं इसके बारे में ये समझ के बैठ गई हूं, ये सही संकल्प करती हूं ये तू है ही ऐसा, तो वो ऐसा ही बनता जा रहा है ना। वैर विरोध वैमनस्य की भावनाएं इसकी पनपने लगी क्योंकि मेरे अंदर इसके प्रति वैर विरोध बढ़ गया है ना। फिर मैंने अपने आप को ठीक किया और मैंने देखा बहुत अच्छा हुआ। ऐसे संसार के अंदर हजारों प्राणी लाखों आज जो घरों में वैर विरोध वैमनस्य बढ़ते जा रहे हैं। दीदी हम किसी से कुछ बोलते नहीं है पर बिना बोले उनके पास पहुंच जाते हैं हम, क्योंकि हमारे संकल्प की रफ्तार रॉकेट से ज्यादा तेज है। तो इसलिए संकल्पों का शुद्धिकरण होना, जहां संकल्प शुद्ध हो जाएंगे सशक्त हो जाएंगे वहां व्यर्थ उसके नजदीक नहीं आ सकेगा, उसके लिए माया मोया कोई चीज नहीं है। है ना। परंतु पहला हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्तव्य क्या है कि मुझे अपने आप को सशक्त बनाना है, शुद्ध बनाना है, शुभ बनाना है। और जहां शुद्ध संकल्पों का वास होगा वहां शुभ भावना और शुभ कामना अपने आप पैदा हो जाएगी। और वो शुभ भावना और शुभ कामना क्या करेगी, जोड़ने का काम करेगी। वहां सकारात्मक चिंतन अपने आप चलेगा। जिसको बाबा कहता है तुम सकारात्मक चिंतन करो, तुम अमृत वाणी बोलो, कहता है ना, है? तो सकारात्मक चिंतन क्यों नहीं चलता, क्यों? क्योंकि हमारा व्यर्थ चिंतन ज्यादा चलता है। स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन ज्यादा चलता है, पर दर्शन ज्यादा चलता है। तो उसके लिए इस बट्टी के अंदर सबसे पहला पुरुषार्थ आप यही करके जाएंगे कि मुझे संकल्पों का शुद्धिकरण करना है। कहती भी है योगाष्ट अग्नि दग्धो विकर्मा, योग एक ऐसी अग्नि है जो सारे पाप कर्मों को दग्ध कर देती है। तो आज वो योग अग्नि, वो परमात्म प्यार की अग्नि, वो सच्चे प्रेम की अग्नि अपने अंदर जागृत करो। और जब वो सच्चे प्रेम की अग्नि जागृत हो जाएगी तो विरक्त भावना अपने आप आने लग जाएगी, व्यर्थ बहुत दूर चला जाएगा और आप जो सद्भाव और सद्भावनाओं में कार्य करने लग जाएंगे। सद्भाव और सद्भावनाएं जोड़ती है, तोड़ती नहीं है ना। तो आप लोग सब बाबा के बच्चे संसार के अंदर रहते हैं, व्यवहार के अंदर रहते हैं, संसार में व्यवहार शुद्धि हो जाए, परंतु व्यवहार शुद्धि संकल्प शुद्धि से व्यवहार शुद्धि होगी। जब तक संकल्प शुद्धि नहीं तो व्यवहार शुद्धि हो ही नहीं सकती है। और व्यवहार को चेंज करना है। कहते संसार में सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है, शास्त्र। संसार में सबसे बड़ा शास्त्र आप कहेंगे गीता है। कोई पुराण कह देगा, कोई कुरान कह देगा, कोई कुछ बोल देगा, परंतु सबसे बड़ा शास्त्र है व्यवहार। तो व्यवहार शुद्धि तब होगी, व्यर्थ से मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब शुद्ध संकल्पों में रमन करेंगे। तो प्राण बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने संकल्पों को शुद्ध करने के लिए डायरी लिखना शुरू किया। रोज डायरी लिखता था और अपने आप को समझाता था, ए वजीर मन तू कहां जा रहा है, ये मंत्री तू क्या कर रहा है ना। तो ये मंत्री और महामंत्री हमारा कौन है, मन और बुद्धि है, और ये सारे हमारे कर्मचारी है ना। तो अपने आप से बातें करो और अपने आप को समझाओ और लिखो। अभी हमारी बट्टी भी हुई थी तो उसमें यही बात हम लोगों की खास निकली कि अपनी डायरी लिखो। डायरी योग में बैठने के बाद ये डायरी के अंदर लिखो क्या अनुभव किया और फिर पढ़ो उसको, फिर उसके ऊपर रेड मार्क करो, फिर अपने में वो चेंज करो, है ना, तब चेंज होगा। नहीं तो जन्म जन्मांतर के संस्कार है, उनको चेंज करना और फिर संसार आग के बीच में रह के चेंज करना, रहो संसार में, रहो संसार के विकारों से न्यारा, भगवान यही तो करा रहा है ना हम लोगों से, है ना। अब उस संसार में रहते हुए संसार से न्यारा और प्यारा बन के रहना, तो उसके लिए हमें अपनी दरबार तो लगानी पड़ेगी, डायरी तो लिखनी होगी, कि दरबार लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ दरबार लगानी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ इतने तक आप लोग जो परिवारों में रहते हैं रात को बैठ के अपने परिवार के दरबार लगाओ, समझा, पहले अपनी दरबार लगाओ, फिर परिवार की दरबार लगाओ, है ना, फिर उसके अंदर छीन जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा, फिर वैसे के वैसे बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, फिर वैसे के वैसे बन जाएंगे, फिर वो ही व्यर्थ चिंतन, कोई ना कोई बात हो गई, फिर वो ही व्यर्थ चिंतन। तो आज वो रौनक सचमुच हम लोगों के अंदर दिखाई देनी चाहिए, पर बहुत कम पुरुषार्थी हैं जिनके अंदर वो रौनक दिखाई देती है ना। वो भी किन पुरुषार्थियों की रौनक के चेहरों में, रौनक पर्सनैलिटी में वो दिखाई देती है, जो डीप चले जाते हैं, गहराई के अंदर जाते हैं, मनन चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर चेक एंड चेंज करते हैं। जो ये नहीं करते उनमें चेंज नहीं आता, थोड़ा क्षणिक असर होता है, फिर वैसे के वैसे। तो हमारे अगर क्षणिक पुरुषार्थ है तो क्षणिक प्रारब्ध है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अंदर गहरे पानी में जाएंगे। जैसे आप देखेंगे सागर है, सागर के ऊपर ऊपर से आपको क्या मिलेगी, रेत मिट्टी मिलेगी ना, परंतु तो सागर के तले में चले जाएंगे तो रत्न मिलते हैं, है ना। ऐसे ही अपने तले में चले जाओ, अपने शुद्ध संकल्पों में रमन करना शुरू कर दो, अपने साथ संकल्प करो कि मुझे शुद्ध संकल्पों में ही रमन करना है, अशुद्धता को अपने नजदीक नहीं आने देना, है ना। एक वार्ड लगा दो तो उससे क्या होगा, अटेंशन भी रहेगा और चेकिंग भी चलेगी, और सावधान होकर के जो हम चाहते हैं वो हम कर पाएंगे, नहीं तो जिंदगी यूं ही चली जाएगी और फिर एक सवाल अपने सामने रह जाएगा, अरे इतना त्याग किया, इतना तप किया, इतनी भट्टियां की, इतना सब कुछ किया, शेर तो कितना आया, है ना। नहीं, मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। आज बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है कि ये बच्चे तुम्हारा चेहरा और चलन सेवा करे, मम्मा और बाबा का चेहरा और चलन सेवा करता है। आज दादी प्रकाश मनी जी को हम देखते थे, चेहरा चलन पर्सनैलिटी उनकी कहीं भी आप देखेंगे, चमकती हुई आंखें हैं, रूहानियत भरी आंखें हैं, चमकता हुआ चेहरा है, एक सेवा करता, हाव भाव से भी लगता था, निर्मल भी है, प्रकाशपुंज भी है, सरलता भी है, दिव्यता भी है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होते हुए झुकना भी जानती है, तो बहुत अच्छा बोलती है, हार मानी झगड़ा खत्म, कोई भी बात होती थी ना कहती थी हार मानी झगड़ा खत्म, है ना। तो ऐसा ही हम सबको अपने आप को एक श्रेष्ठ और महान और संपन्न आत्मा बनाना है, तुम शुद्धिकरण करो, है ना। पर शुद्धिकरण करते करते बहुत ऐसा भी नहीं हो जाना शून्य अवस्था में चले जाए, कई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं बच्चे, पर शून्य भी नहीं जाना, ज्ञान युक्त तरीके से, जैसे बाबा ने ज्ञान युक्त तरीके से हम सबका शुद्धिकरण किया, अपना शुद्धिकरण किया, फिर हम सबका शुद्धिकरण करके हमको ऐसा लायक बनाया जो एक लगता है कि संसार से हट करके कुछ बच्चे चल रहे हैं जो संसार को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि हट से हम अपने आप को दबाए, उसमें संतुलन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं संतुलन खो करके हम एक ऐसी चीज ऐसे ही बह जाए, ऐसा भी नहीं होना। अरे ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट का संतुलन होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। संसार में रहते हैं उसका भी संतुलन होना चाहिए, और ये व्यर्थ संकल्प तब तक नहीं छूटेंगे जब तक ग्रस्तीपना नहीं छूटेगा। ग्रस्तीपने का मतलब मैं करना तो चाहती हूँ, मैं कर भी सकती हूँ, परंतु क्या करूँ मेरे से होता नहीं है। ये क्या है, ये कौन सा संस्कार है? ग्रस्तीपने का। मैं ग्रस्ती नहीं हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। मैं जब भगवान के घर में आई तो मैंने क्या बोला, भगवान ने मेरे आगे एक संकल्प रखा, देह और देह के सर्व संबंधों का बुद्धि से त्याग कर। और मैंने भी इसी आश में थी कि मैं जब आई तो मैंने क्या किया, देह देह से, क्योंकि जब तक देह और देह के संबंध में आने वाली चीजें वस्तु वैभव व्यक्ति से बुद्धि नहीं निकली तब तक मेरा जीवन सफल नहीं हो सकता, सफलता मेरे जीवन का अंग नहीं बन सकती। मैं सफल मूर्त बनना चाहती हूँ तो मुझे गृहस्थी से ट्रस्टी बनना है, समझा? तो अब ट्रस्टी कैसे बनो, यही समझो कि ये मैंने अर्पणम समर्पणम कर दिया, कर दिया। कहते हैं कुछ समर्पण करो, कुछ स्वाहा करो, कुछ सफल करो। क्या समर्पण करोगे? देह, देह के सर्व संबंध, देह के संबंध में आने वाली वस्तु व्यक्ति वैभव, समर्पणम समर्पणम समर्पणम। और फिर स्वाहा क्या करना भाई? आप देखेंगे ये समर्पण करने के बाद कुछ और पैदा हो जाता है सूक्ष्म में, मैं मेरी बुद्धि मेरा प्रशासन मेरा ज्ञान मेरा सबको चलाने का तरीका बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा ईगो आने लगता है, थोड़ा प्राप्तियों का भी ईगो आने लगता है थोड़ा सूक्ष्म में, तो उसका स्वाहा करना, स्वाहा 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 रोज आहुति डाली। और सफल क्या करना है, मेरे पास बाकी क्या रह गया, अभी भी है कुछ, संकल्प है, श्वास है, समय है, वो मुझे सफल करना है, ठीक है। और जब तक हमने ये नहीं किया तो हमारी वाणी वाणी तक रह जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए वाणी की शक्ति से संकल्प शक्ति सूक्ष्म है। और बाबा ऐसा काम हम बच्चों से कराता है, जो काम हम वाणी की शक्ति से नहीं कर सकते वो हम शुद्ध संकल्पों की शक्ति से कर सकते। अब कई ऐसी आत्माएं हैं, जड़ आत्माएं, जो आकर के कुछ ना कुछ उथल पुथल हर वक्त मचाती रहेगी, वातावरण खराब करती रहेगी। और मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा वातावरण खराब ना हो, तो मैं क्या करूंगी? किनारा भी नहीं कर रहे, मुझे अपने शुद्ध संकल्पों की रफ्तार से शुभ भावना और शुभ कामना का बीज बोते रहना है और धीरे 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 वो सब चेंज हो जाएगा। शुद्ध संकल्प एक रूहानी लिफ्ट भी है, लिफ्ट का काम करती है। चाहो शुद्ध संकल्प की लिफ्ट से आप परम धाम पहुंच जाओ, निराकारी दुनिया की सैर करो, आकारी दुनिया की सैर करो, चाहो तो विदेश में बैठे हुए लोगों तक शुद्ध संकल्पों का प्रवाह देके आओ, उनको चेंज करो, ठीक है? तो इसलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने आप को अगर सशक्त बनाना चाहते हैं, संपन्न बनाना चाहते हैं, संपूर्णता की दौर में आगे आना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? अपने संकल्पों के ऊपर ध्यान देना होगा मुझे, और उसमें दृढ़ता लानी होगी। जब हम ये दो काम करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, फिर हम अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कोई बढ़ाने वाला नहीं है। जैसे हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो 62 साल हो गए मेरे कोई संस्था के अंदर, तो हम देखते हैं कोई किसको बढ़ाने वाला नहीं, आगे करने हीरो हीरो करने वाला नहीं है। हीरो हीरो तब अपने आप होने लगती है जब हम अपने आप को अंदर सशक्त बना करके कार्य में लग जाते हैं, अपने आप को पहले बनाने के कार्य में लग जाते हैं। तो यही सोचो, मुझे दिव्य मूरत बनना है, मुझे सत्यता की मूरत बनना है, मुझे मेरे बाप की सूरत मेरी मूरत से दिखाई दे, ऐसा मुझे शुद्ध संकल्प करना है। नहीं, तब हमारी मनोस्थिति में कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो संसार के अंदर रहते हैं, पुराने संस्कार है, पुराने विचार है, पुराने लोगों के संग में रहते हैं, उनके किस्म किस्म के उनके भी संस्कार है ना, परंतु उनके सबके बीच में रहते हुए मुझे शुद्ध संकल्पी बनना, और शुद्ध संकल्प में ही एकाग्रता आती है, और जहां एकाग्रता का वास है वही महान योगी है। जिस योगी के पास एकाग्रता नहीं है, शीतलता नहीं है, आप देखेंगे शुद्ध संकल्प, अपने आप को शुद्ध संकल्प भी बनाने के लिए एक और अटेंशन रखना होगा कि मुझे मधुरता और धैर्यता और सहनशीलता को अपने पास रखना है। जब मेरे जीवन में मधुरता होगी, धैर्यता होगी और सहनशीलता होगी, तो क्या होगा, मैं उल्टी सीधे काम से थोड़ा दूर हटती जाऊंगी और अपने आप अपने संकल्पों को कम करती थी। मैं देखा दीदी मनमोहिनी हमेशा इस बात का पुरुषार्थ करती थी कि जो बाबा का संकल्प है ना वो मेरा संकल्प होना चाहिए, टैली करती थी बैठ के। हम उस समय छोटे थे, हम तो कहते क्या करती रहती है दीदी, कहती मेरा यही पुरुषार्थ चलता है, अंतिम गरियों में उनका यही पुरुषार्थ चलता था, जिसे क्या होता है व्यर्थ संकल्पों की स्पीड कम हो जाती है, और शुद्ध संकल्प की स्पीड इतनी तेज नहीं होती है, परंतु शुद्ध संकल्प में प्राप्तियां फल अपने आप निकलने लगते हैं। तो मुझे बहुत हाई फाई स्पीड वाला नहीं बनना, हलचल में नहीं आना ना? मुझे व्यर्थ संकल्पों की स्पीड को कम करना है और शुद्ध संकल्पों की स्पीड को अपने आप को बीच बीच में जाकर जो मेरे संकल्प चलते हैं, समझो अभी मेरे को कोई इस तरह के संकल्प चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि उस संकल्पों में आप बह जाइए, उसका अपने चिंतन की धारा को बदल लो कहते हैं ना, तो उस समय आप अपने चिंतन की धारा को बदलने के लिए क्या करो, सैर करने लग जाओ, चिंतन की धारा को बदलने के लिए कुछ लिखने लग जाओ, चिंतन की धारा को पढ़ने के लिए कोई स्थूल काम करने लग जाओ, ताकि आपका विकर्म ना बने। अगर आप उसी संकल्प के अंदर चलते रहेंगे तो वो संकल्प आपसे गलत काम कराए बिना, विकर्म कराए बिना रहेगा नहीं, और आप नहीं चाहते मेरे से विकर्म हो, तो उस समय कहते अपने चिंतन की धारा कुछ लिखने लग जाओ, कुछ गाने लग जाओ, है ना, कुछ और अपना उसका रुख बदल दो, और रुख बदलते 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 ठीक हो जाएगी। थोड़ा योद्धा बन के युद्ध स्थल पर तो रहना ही पड़ेगा, और सदा याद रखो मैं रूहानी योद्धा हूं, है ना, मेरी लड़ाई मेरे दुश्मन कौन कौन है, कौन ये विकल्प मेरे दुश्मन है, ये विकार ये कमजोरियां ये मेरी दुश्मन है, ये मुझे व्यर्थ से मुक्ति नहीं दिला सकते, मुझे मुक्त बनना है, जीवन मुक्त बनना है, है ना, बनना है ना जीवन मुक्त, लक्ष्य तो यही है ना कि मुझे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है जीवन में रहते हुए सर्व विकारों विकर्मों से मुक्त होकर के एक सशक्त प्राणी की तरह, एक वरदानी प्राणी की तरह मुझे जीवन जीना। कहते हैं मुक्त बनो, विमुक्त बनो, जीवन मुक्त बनो। पहले मुक्त बनो, फिर विमुक्त हो जाओ, फिर जीवन मुक्त हो जाओगे। परंतु पहले मुक्त नहीं हुए अपने विकारों से, अपनी कमजोरियों से, फिर विमुक्त नहीं हुए तो जीवन मुक्त नहीं बन सकते। तो जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त करनी है तो क्या करना, शुद्ध संकल्पों में सदा रमन करते चलो, करते चलो, करते चलो। उसके लिए रोज दरबार भी लगाओ और बाबा से वेरीफाई कराओ और डायरी लिखो, विस्तार को कम करके सार में टिक जाओ। और अमृत वेला जो बताया जाता है, ज्ञान की क्लास अमृत वेला, उसमें ही करना, उसमें भी अलर्ट होकर के बैठो और कोई ना कोई पावरफुल संकल्प लेके बैठो। ऐसे नहीं बार बार यही को मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा मैं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा करते करते आते ऐसे करते नहीं। मैंने कोई ना कोई शुद्ध संकल्प, पावरफुल संकल्प लेके बैठो और नया संकल्प लेके बैठो। नवीनता में खुशी रहती है, नवीनता में उमंग और उत्साह रहता है। एक ही प्रकार की परिपाटी में आप अपने आप को चलाते रहेंगे तो उसमें निराशा आ जाती है ना, अच्छा नहीं लगता, बोरिंग आ जाती ना। हमको ना अपने से उदास होना है, अपने से भी सदा खुश रहो। वो गुलजार दादी बहुत अच्छा बताती है, खुद दिल खुश मिठाई खाते रहो, अपने को भी खुश रखो, दूसरों को भी खुशियां अपने जीवन से बांटते रहो। परंतु वो तभी होगा जब हम अपने आप को सशक्त बना लेंगे, है ना, और दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर लेंगे, तब हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, ओम शांति।
ओम शांति। कितनी सुंदर क्लास, कितना सुंदर टॉपिक। तो जैसे कि टॉपिक था संकल्प शुद्धि और उसी से होगी संकल्प की
व्यर्थ की मुक्ति,
व्यर्थ की मुक्ति, हाँ, और संकल्प सिद्ध भी होगा, है ना। तो दीदी ने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिससे हमारे पुरुषार्थ में कहीं भी कोई कमी आ सके। तो ऐसे ही जैसे कि बाबा भी कहते हैं इकोनॉमी, और जिस भट्टी में हम आए हैं इस भट्टी का भी अगर देखें तो लक्ष्य क्या है, यही तो लक्ष्य है कि हमें जलाना है। किसे जलाना है? व्यर्थ नेगेटिव वायरस है जो हमारे अंदर चल रहा है, हमारे जीवन को धीरे 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 दीमक की तरह काट काट के खोखला करता जा रहा है। जैसा कि लक्ष्य है देवता बनना है और समय कम है, ऊंची मंजिल है, तो उसे प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी हमें सकारात्मक जरूर बनना है। और इसीलिए भट्टी में आए और जो मेडिटेशन हम रोज कर रहे हैं उसका अभ्यास निरंतर करते रहें। यहां पर जब आए हैं तो निरंतर अभ्यास करना है, वहां तो कभी कभी इनुमा शाम हो गया, अमृत वेला कर लिया, यहां तो हमें निरंतर उस अभ्यास को करना है। और मेडिटेशन है ही क्या, कहते भी हैं मेडिटेशन इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लगातार अच्छा सोचने की प्रक्रिया को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। और आज दीदी ने उसमें हमें बहुत 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 अच्छे से गाइड किया। दीदी का फिर से एक हाथ की ताली से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सब भट्टी के अंदर आए हैं, अपनी यादगार यहाँ छोड़ के जाना। ये हरिनगर हरिद्वार में रहने वाले हर हर गंगे भैया वाले हैं बच्चे, है ना, ठीक है। तो अपनी यादगार, जैसे यहाँ तपस्या के लिए आए हैं और कुछ अनुभव करने के लिए आए हैं और जो बातें आप सुन रहे हैं उसको सुन करके उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में लाने के लिए आए हैं, तो अभी डेढ़ दिन से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है ना? और बाकी आपके दो दिन जो भी है उसमें भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा, यहाँ के भाई बहन के मुख से मैं सुन रही हूँ कि अच्छा स्टडी का शौक है, अच्छा योग लगाने का भी शौक है, टाइम पर पहुंच जाते हैं, तो ये उसको कायम रखना, ऐसा हमारा अनुरोध है आप सबसे, ठीक है हाँ? क्योंकि आपको पता है कि मैं एक दिन के लिए, मेरे भी बट्टी चल रही थी यहाँ, उसको छोड़ करके आप सबके कारण मैं एक दिन के लिए 13 तारीख दिल्ली गई और 15 तारीख को फिर आपके साथ मैं दिल्ली से वापस यहाँ आई, और अब कल दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पे राजपथ पर 18 तारीख शाम को मैराथन रेस है, और 19 तारीख संडे है, वहाँ लाल किला में सवेरे 5 से लेकर 8 बजे तक योग है ना, उसकी वजह से मेरे को यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे को बहुत काम। अभी भी एक फोन आया कि वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी तो आपका मैराथन था, उसका क्या हुआ बहन जी? क्योंकि हमारा ये काम सारा मैं देख रही थी, तो बार बार यहाँ पर कभी कहाँ से फोन आ रहा है, कहाँ से फोन आ रहा है, तो वो भी जरूरी है। और रेड फोर्ट की जो स्टेज होती है वो भी हमारे को ही, हमारे ग्रुप को ही बनानी होती है ना? तो आप लोग वो भले मिस करेंगे परंतु ये यादगार जरूर बना करके जाना, ऐसी हमारी शुभकामना और शुभकामना है। ओम शांति।
तो अभी 2 मिनट योग में बैठेंगे।
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को।